नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और शायद तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत के रमेश पुदियाल ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के ओपन पुरुष फाइनल में प्रवेश कर इतिहास रचा। 134वें डूरंड कप में बोडोलैंड एफसी ने पंजाब एफसी को 1-0 से हराया। बिहार के राजगीर में एशिया रग्बी अंडर 27 के मुकाबलों की आज से शुरुआत, और हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश ने हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत के रमेश बुदियाल ने आज इतिहास रचते हुए महाबलीपुरम में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के ओपन पुरुष फाइनल में प्रवेश कर लिया है। रमेश ने दिन की शुरुआत क्वार्टर फाइनल हीट रेस में 14.84 अंक के साथ शीर्ष स्थान से की। वो फिलीपींस के नील सांचेस से 12.80 से आगे रहे। सेमीफाइनल में रमेश ने अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए 11.43 अंक हासिल किए और इंडोनेशिया के पजार एरियाना के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इस तरह किसी भारतीय सर्फर ने पहली बार फाइनल में जगह पक्की की। भारत के किशोर कुमार भी सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन बाद में 8.03 अंक के साथ वे चौथे स्थान पर रहे। मनोज, यहां से अपनी चर्चा का आगाज हम करते हैं। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत की दृष्टि से आज का दिन बेहद शानदार रहा, क्योंकि आज भारत के रमेश बुदियाल ने फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बुदियाल जो है पहले हीट्स में उन्होंने चमके, सेमीफाइनल तक पहुंचाया किशोर के साथ, दोनों का बहुत शानदार प्रदर्शन, और उसके बाद सेमीफाइनल बहुत सहजता के साथ जीतना। ये तो आप देखिए कि मालदीव में भाग नहीं ले पाए थे, अगर ये मालदीव में भी भाग लिया होता तो ये तजुर्बा इनके बहुत काम आता और इस प्रदर्शन में ये और ज्यादा सुधार करते। लेकिन अपने आप में बाकी अन्य प्रतिद्वंदियों को जिस तरह से इन्होंने धराशायी किया, अपने लिए महत्वपूर्ण रैंकिंग अंक जुटाए, और 2026 के एशियन गेम्स के लिए जो कोटा है इनको ये पहले ही दिला चुके हैं, और अब यहां पर देखना दिलचस्प होगा कि जो फाइनल मुकाबला होगा, जो फाइनल में इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के जो खिलाड़ी हैं उन पर ये कैसे पार करते हैं।
बिल्कुल, लेकिन उम्मीद लगती है कि ये पार पा जाएंगे और भारत को एक बहुत खुशी वाला दिन देने वाले हैं। हालांकि सेमीफाइनल में भी रमेश बुदियाल और भारत के ही किशोर कुमार सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने थे, है ना।
देखिए, एक ने फिलीपींस के खिलाड़ी को हराया, एक फिलीपींस के खिलाड़ी से हारा, यानी टफ फाइट जो है वो देखने को मिली थी, और जिस तरह से अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार करते रहे रमेश, ये अपने आप में मैं समझता हूं कि अब भारतीय सर्फिंग के नए अध्याय लिखे जाने की तैयारी हो गई है।
और अब बात डूरंड कप की। 134वें डूरंड कप में आज ग्रुप डी के एक मैच में बोडोलैंड एफसी ने पंजाब एफसी को 1-0 से हरा दिया है। कोकराझार में खेले गए मैच में दोनों ओर से काफी संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला। कोलंबियाई फुटबॉलर रॉबिन्सन ब्लेंडन के दूसरे हाफ में किए गए गोल की बदौलत बोडोलैंड एफसी ने पंजाब एफसी को हराकर डूरंड कप से बाहर कर दिया। इस जीत से बोडोलैंड एफसी टूर्नामेंट के ग्रुप डी में शीर्ष पर पहुंच गई है। कल ग्रुप एफ के एक मैच में नैरोका एफसी का मुकाबला रियल कश्मीर से शाम 4 बजे होगा, जबकि ग्रुप ए में इमामी ईस्ट बंगाल एफसी का मैच इंडियन एयरफोर्स एफटी से शाम 7 बजे खेला जाएगा। मनोज, डूरंड कप बहुत पुराना टूर्नामेंट है और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है। बहुत सारे पारंपरिक टीमें इस कप का हिस्सा रही हैं। मोमडन स्पोर्टिंग इसका हिस्सा रही, ईस्ट बंगाल इसका हिस्सा रही, और इसके अलावा मोहन बागान, ये पारंपरिक सेना की टीम इसका हिस्सा रही है, और बहुत लंबे समय से 134वां ये संस्करण चल रहा है। तो डूरंड कप में बड़े कमाल के आजकल मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। आपकी नजर में मुख्य मुकाबले में कौन कौन सी टीमें इस समय नजर आ रही हैं?
देखिए, इस बार आपने बहुत बड़ा वजह फरमाया कि जिस तरीके से 134वां पड़ाव और सेकंड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है ये दुनिया का, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, और सेना जो है इसको कराती है लगातार, और एक अनुशासन देखने को मिलता है जो आपको अन्यत्र किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में उतना बड़ा अनुशासन देखने को नहीं मिलेगा जो डूरंड कप में देखने को मिलता है। जो आपने कहा, मैं तो कहूंगा कि आपकी बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगा, कि जो एक नई सनसनी के तौर पर उभर कर सामने आई है बोडोलैंड की टीम, जो आपने शुरू में जो उसका रिजल्ट बताया, पंजाब को जो एफसी को हराया है उन्होंने 1-0 से, लगातार दूसरी जीत आप दर्ज करते हैं और जिस तरह से उनकी 4-2-3-1 की जो रणनीति थी उस शैली से वो खेले और उसमें कारगर साबित हुए, अपॉर्चुनिस्टिक गोल करने में बिल्कुल नहीं चूकती है ये टीम, और जिस तरह से रॉबिन्सन ब्लेंडन जो कि कोलंबियाई स्ट्राइकर हैं उन्होंने जो रिबाउंड पर जो गोल किया था वो बेमिसाल था।
हालांकि पंजाब ने बड़ा रक्षात्मक खेल खेला है और बड़ा संघर्षपूर्ण आज का मुकाबला रहा है, उसने मुकाबला बहुत खूब किया, लेकिन रॉबिन्सन ने आज के मैच का रुख पलट कर रख दिया है।
बिल्कुल, मैं तो कहूंगा अपॉर्चुनिस्टिक गोल क्या होता है वो देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि उसने जो है ना इस गोल ने इस मैच की पूरी तरह से तस्वीर बदल दी और बोडोलैंड को एक सशक्त दावेदारों में शामिल कर दिया है।
और अब बात रग्बी की, एशिया रग्बी अंडर 27 के मुकाबलों की आज से शुरुआत हो गई है। बिहार के राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में उद्घाटन मैच खेला गया। चैंपियनशिप के पहले मैच में पुरुष वर्ग के मुकाबले में श्रीलंका ने हांगकांग को पराजित किया। पुरुष वर्ग में भारत ने जीत से अपने अभियान की शुरुआत की। भारत ने 17 के मुकाबले 24 अंक प्राप्त कर संयुक्त अरब अमीरात को हराया। ब्यूरो के साथ हैं हमारे सहयोगी शक्ति सिंह।
महिला वर्ग में भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में कजाकिस्तान को शिकस्त देते हुए जीत हासिल की। पुरुष वर्ग में भारतीय टीम का नेतृत्व सुमित कुमार राय कर रहे हैं, जबकि महिला टीम की कप्तान भूमिका शुक्ला हैं। आज पुरुषों के शुरुआती 4 मुकाबलों में बड़े उलटफेर, कांटे की टक्कर, शानदार खेल देखने को मिला। अपने दूसरे मुकाबले में हांगकांग ने संयुक्त अरब अमीरात को 27-0 से पराजित किया। पुरुष वर्ग के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को पराजित कर दिया। वहीं उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच मैच में उज्बेक टीम ने 12-0 से जीत हासिल की। मलेशिया की टीम को कजाकिस्तान के साथ हुए मैच में बराबरी से संतोष करना पड़ा, जबकि मलेशिया ने एक अन्य मुकाबले में चीन को पराजित किया। महिलाओं के मुकाबले में चीन ने श्रीलंका को 55-0 के बड़े अंतर से पराजित किया। वहीं श्रीलंका ने अगले मैच में नेपाल को हराकर बढ़त बनाई। नेपाल की लड़कियों को पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान ने हरा दिया। आज कुल 24 मुकाबले खेले जाने हैं। चैंपियनशिप का फाइनल मैच कल खेला जाएगा। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप पहली बार बिहार के राजगीर में आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में कुल 9 देशों की 16 टीमें भाग ले रही हैं। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
इस बीच ताजा खबर यह है कि एशिया रग्बी अंडर 20 में भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मनोज, ये एक बहुत अच्छी खबर हमें मिली है, जहां तक महिला अंडर 20 का प्रश्न है कि भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है।
जी हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि रग्बी 7 जो है भारत में आम आदमी जो है, जो खेल से जुड़ा हुआ व्यक्ति भी है
जी,
वो उतनी ज्यादा बारीकी से जानता नहीं है। और एक ऐसा खेल जिसमें हम 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने जो है प्रवेश किया था, और हालांकि हमारा कुछ उसमें सिक्का चला नहीं और हम साउथ अफ्रीका, टोंगा और वेल्स से हार गए थे, लेकिन ये एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है और इसमें बहुत संभावनाएं हैं, प्रचुर संभावनाएं हैं। और अगर इसी तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम अगर करती रही, हालांकि भारत को आज, जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में बताया कि श्रीलंका से एक झटका भारत को जरूर झेलना पड़ा है,
हालांकि शुरुआती मैच हमने जीता,
शुरुआती मैच जी हाँ यूएई को पराजित किया,
बिल्कुल,
तो उस अपने आप में ठीक है, शुरुआत अच्छी थी, लेकिन महिलाओं ने झंडे गाड़ दिए। मुझे लगता है कि अगर महिलाओं ने यहां खिताब पर अगर कब्जा कर लिया तो मैं समझता हूं भारत में एक रग्बी 7 को लेकर एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी।
सही कहा आपने मनोज, अपेक्षाकृत रग्बी का चलन हमारे यहाँ कम है, तो क्या इस आयोजन से रग्बी को भारत में लोकप्रिय बनाने में सफलता मिलेगी?
बिल्कुल मिलेगी जी। आप देखिए, अगर हम इतिहास देखते हैं तो 1896 में भी भारत में ये मैच मुकाबला खेला गया
जी।
खजियार जिमखाना जो है वहां पर, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पड़ता है, वहां प्रमाण मिलते हैं कि वहां पर एक मैच रग्बी 7 का आयोजित किया गया था, 7-7 खिलाड़ियों वाला मैच, जिसमें 14 मिनट का जो खेल होता है और 7-7 मिनट के जो 2 हाफ होते हैं और बीच में एक ब्रेक, उसी अंदाज में वो मैच खेला गया था। 2016 का रियो ओलंपिक अगर आप याद करें तो वहां पर इसको पहली बार ओलंपिक खेलों में जगह मिली इस खेल को, और उसके बाद लगातार इस खेल की जो साधना रही, जहां पूरी तरह डोमिनेशन रहा है ग्रेट ब्रिटेन का, फिजी का, ऑस्ट्रेलिया का,
अमेरिका का,
यानी अब भारत को मैं समझता हूं कि अगर इस लेवल पर भी अगर भारत जीतता है एक नए युग की शुरुआत होगी और कई रग्बी खिलाड़ी, रग्बी क्लब यहां बनेंगे और भारत जो है कंधे से कंधा मिलाकर विश्व पटल पर भी दिखाई देगा।
अब वापस हम मुकाबले के ओर रुख करते हैं एक बार फिर, तो पुरुष वर्ग की अगर हम बात करें तो पुरुष वर्ग में आपको संभावित विजेता कौन कौन लगते हैं?
देखिए जी, पुरुष वर्ग में तो श्रीलंका एक प्रबल दावेदार है निश्चित तौर पर, अगर भारत को उसने पराजित किया जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया
जी,
तो वही मुझे प्रबल दावेदार लग रहे हैं आप, क्योंकि भारत को अब अगला मुकाबला, क्योंकि 3-3 4 टीमें हैं हर ग्रुप में और भारत, हांगकांग, श्रीलंका और यूएई, और भारत को अगर क्वालिफाई करना है तो हांगकांग को हराना ही होगा, और हांगकांग को हराने में मेरे ख्याल से कोई इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी, तो भारत का दावा रहेगा। कई बार क्या होता है कि अलार्मिंग बेल होता है आपका हारना, और वो हार जो है आपको आगे के लिए बहुत बड़ा सबक देकर जाती है। तो मैं समझता हूं कि अगर यहां दोबारा अगर आपका श्रीलंका से वास्ता फाइनल में पड़ता है तो मुझे लगता है जो चूक हुई है यहां पर उन गलतियों को भारत जरूर सुधारेगा।
अच्छा, महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में आपको हमारी टीम से कितनी उम्मीदें हैं?
देखिए जी, महिलाओं में क्योंकि अभी जैसा रिपोर्ट में पता चला कि कजाकिस्तान से पहला मुकाबला था और वहां भारतीय टीम विजयी रही, और हांगकांग और यूएई है मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह से भूमिका की अगुवाई में भारतीय टीम ने झंडे गाड़े हैं, अच्छी शुरुआत की है, क्योंकि ये कैसा खेल है ना जिसमें आपको रनिंग, पासिंग, किकिंग, इन सबका बड़ा महत्व होता है, टैकल करने का बड़ा महत्व होता है, और ये क्योंकि काफी समय से एक साथ खेल रहे हैं सब खिलाड़ी, तो उससे एक अच्छी तारतम्यता बनती है, अच्छा तालमेल बनता है जो आगे के लिए बहुत काम आने वाला है।
और अब बात हॉकी की। हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश ने आज आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हरियाणा ने दिन के पहले क्वार्टर फाइनल में ओडिशा पर 4-1 से शानदार जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश के खिलाफ पेनाल्टी शूटआउट में 2-1 से जीत हासिल की, जबकि झारखंड ने पंजाब को 3-1 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र पर 2-1 से जीत दर्ज की। आगे मनोज सफर कैसा रहने वाला है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश जो है सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं, संभावित विजेता और संभावित फाइनलिस्ट टीमें कौन सी नजर आती हैं आपको?
मुझे तो हरियाणा में बहुत दमखम दिखाई दे रहा है, एक ऐसी टीम जिसका पिछले अगर आप इतिहास देखेंगे पिछले कुछ वर्षों का, बहुत अतीत में मैं नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा पुराना रिकॉर्ड खंगालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें मैं देखता हूं कि एक हरियाणा टीम ने डोमिनेट किया, कई बार तो 11 में से 7-7 खिलाड़ी जो हैं वो यहां से मतलब हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। अब चाहे आप सीनियर टीम में रानी रामपाल हो, रितु रानी हो, नवजोत कौर हो, ये सब की सब हरियाणा को बिलोंग करती हैं, और इन्होंने वाकई अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। और उड़ीसा जो कि अब हॉकी के खेल में बहुत अग्रणी है, वहां पर राज्य सरकार से बहुत योगदान मिलता है, बहुत मदद मिलती है इस खेल को।
अच्छा, झारखंड भी छुपा रुस्तम हो सकता है?
झारखंड के साथ देखिए जी, पंजाब को हराना, पंजाब तो हॉकी की विरासत माना जाता है, उसको शिकस्त दी है उसने, तो मैं संभावित तो यही मान रहा हूं कि हरियाणा वर्सेस झारखंड मुकाबला हो सकता है, बाकी यूपी भी चौंका सकता है।
कुल मिलाकर मुकाबले रोमांचक होंगे, रोचक होंगे
जी।
और बात शतरंज की। चेन्नई में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के दूसरे दौर में नीदरलैंड्स के ग्रैंड मास्टर जॉर्डन वैन फॉरेस्ट के साथ अपनी बाजी ड्रॉ खेली। वहीं विदित गुजराती को अमेरिका के रे रॉबिन्सन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय खिलाड़ी वी प्रणव के खिलाफ जीत से जर्मनी के विंसेंट केमर मास्टर्स वर्ग की तालिका में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। अनिश गिरी और निहाल सरीन का मुकाबला बराबरी पर छूटा। कार्तिकेय मुरली और अवोंडर लियांग की बाजी भी ड्रॉ रही। भारतीय ग्रैंड मास्टर इनियान पा ने चैलेंजर्स वर्ग में ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणापल्ली पर जीत हासिल की। वहीं ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु पौराणिक ने लियोन लियूक मेंडोका पर जीत के साथ वापसी की। दीप्तायन और प्रणेश अधिवान और वैशाली के अलावा हर्षवर्धन और आर्यन का मुकाबला भी ड्रॉ रहा। मनोज, हमारे कई होनहार खिलाड़ी शतरंज की बिसात पर अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, विश्व पटल पर कर रहे हैं, लेकिन यहां अगर हम चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स की बात करें तो क्या लगता है अंतिम विजय हमारी होगी?
बिल्कुल हो सकती है जी। सबसे पहले तो मैं एक आज क्योंकि रक्षाबंधन का दिन है
जी जी,
तो क्योंकि प्रज्ञानानंदा और हमारे वैशाली जो भाई बहन की जोड़ी है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और उन्हीं से प्रेरणा ले रही है जॉर्डन और मैक्रेड वान फेरिस्ट, ये भाई बहन की जोड़ी, और जॉर्डन वही जॉर्डन जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने बहुत अच्छे डिफेंस का परिचय दिया और अर्जुन एरिगेसी को जिस तरह से ड्रॉ पर रोका वो बड़ा अपने आप में काबिले तारीफ था। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जॉर्डन जो है उनको उनके जो तीन भाई बहन हैं सभी शतरंज खेलते हैं और उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर जो हैं अर्नोल्ड वॉन फॉरेस्ट, ये सन 1800 और अर्ली 1900 में डच चैंपियन भी रहे हैं, तो एक तरह से इनको ये विरासत में मिला है खेल।
बिल्कुल सही कहा आपने मनोज, और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने विस्तार के साथ हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ आतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।